आज है 21 जुलाई दिन मंगलवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन की क्यूरेटिव याचिका की खारिज।
दिस इज अस राहत है एक कॉमन आदमी के लिए, हु कीप्स अ फेथ इन द जुडिशरी, हु कीप्स अ फेथ इन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंड द गवर्नमेंट।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने कहा, व्यापम और ललित गेट मामलों से पार्टी हुई शर्मसार, लिखी अमित शाह को चिट्ठी।
संवाद की थोड़ी कमी हुई है, वो संवाद बढ़ना चाहिए, लेकिन अपने मन की बात तो हमें कहनी चाहिए। तो मैंने
बिहार में 6 वाम दलों ने किया बंद का आह्वान, राज्य में दिखा सर, और मिलवाएंगे ऐसे स्ट्रीट आर्टिस्ट से जो लोकल ट्रेन में गाने गाकर करते हैं मनोरंजन। लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के आरोपी याकूब मेमन की आखिरी अपील को भी खारिज कर दिया है। मुंबई बम धमाकों की साजिश के आरोप में मुंबई के टाडा कोर्ट ने याकूब को मौत की सजा सुनाई थी। इन विस्फोटों में लगभग 257 लोग मारे गए थे। मेमन को इसी महीने के आखिर में सजा दी जानी है। ब्रितानी सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि अगले 5 सालों में सरकारी खर्चे में 40% और 25% बचत करने की योजना बनाएं। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉर्ज ऑस्बॉर्न ने आज सरकारी व्यय की एक प्रमुख समीक्षा पेश की। इसका लक्ष्य है सरकारी खर्चे में $31 अरब की बचत करना। वित्त मंत्री ने सांसदों को बताया कि रक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्चे को कम न करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन देश अपने संसाधनों के भीतर ही सुचारू तरीके से काम करता रहे, इसके लिए बचत करना जरूरी है। दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह ने शंघाई में एक विकास बैंक की शुरुआत की है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स देश इसके सदस्य हैं। ये बैंक विकासशील देशों के ढांचागत निर्माण के कार्यक्रमों के लिए वित्तीय मदद देगा। इस बैंक का सबसे बड़ा सहभागी चीन है, जिसने इसमें $55 अरब की पूंजी लगाई है। शंघाई में बैंक के उपाध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका के बैंकर लेस्ली मॉस्ड्रॉप ने कहा कि ये बैंक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नए तरीके तलाश करेगा।
The new development bank will seek to do things differently. We will try to firstly innovate.
ये नया विकास बैंक चीज़ों को थोड़ा अलग ढंग से करने की कोशिश करेगा। हम पहले विकास के मौजूदा मॉडल्स में सुधार लाने और उन पर नए प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास चीज़ों को करने का कोई नया आदर्श नहीं है। हम मानते हैं कि हमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से सीखना चाहिए। ये थे लेस्ली मॉस्ड्रॉप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जापान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक तोशीबा के मुख्य कार्यकारी ने वित्तीय खातों में भारी घोटाले की जिम्मेदारी लेते हुए आज इस्तीफा दे दिया है। जांचकर्ताओं ने पता लगाया है कि वर्ष 2008 से तोशीबा ने अपने मुनाफे को करीब $1.2 अरब बढ़ाकर बताया। एक संवाददाता सम्मेलन में तोशीबा के मुख्य कार्यकारी हिसाओ तनाका शर्म और पछतावा दिखाते हुए करीब 30 सेकंड तक सिर झुकाए रहे। कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस्तीफा दे रहे हैं। सोमालिया में अफ्रीकी संघ के एक वाहन के बारूदी सुरंग से टकरा जाने पर कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा कल शाम राजधानी मोगादिशु के पास मेरका शहर में हुआ। सोमालिया में बीबीसी के रिपोर्टर का कहना है कि यह इलाका अब भी तनावग्रस्त है। अफ्रीकी संघ का मिशन फिलहाल चरमपंथी गुट अल शबाब पर हमले कर रहा है। इसराइल की संसद नेसेट ने लोगों के वाहनों पर पत्थर फेंकने के लिए 20 साल तक जेल की सख्त सजा सुनाने के पक्ष में वोट दिया है। पिछले साल पूर्व जेरूसलम में फलस्तीन विरोध प्रदर्शनों की कड़ी के बाद इस कानून को प्रस्तावित किया गया। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज राज्यसभा में ललित मोदी का मुद्दा छाया रहा, करेंगे चर्चा। लेकिन पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1993 में हुए मुंबई धमाकों में दोषी पाए गए याकूब मेमन की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने याकूब मेमन की याचिका को खारिज किया है। टाडा कोर्ट ने साल 2007 में याकूब मेमन को धमाकों की साजिश में शामिल होने का दोषी पाया था और फांसी की सजा सुनाई थी। आपको याद होगा कि 1993 में मुंबई में एक के बाद एक 12 धमाके हुए थे और इन धमाकों में 257 लोग मारे गए थे। एक रिपोर्ट के साथ पंकज प्रदर्शी।
1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के मामले में दोषी करार दिए गए याकूब मेमन की क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वर्ष 2007 में टाडा कोर्ट ने 53 वर्षीय याकूब मेमन को धमाकों की साजिश में शामिल होने का दोषी पाते हुए फांसी की सजा दी थी। मार्च 1993 में मुंबई में एक के बाद एक हुए 12 धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अदालत ने मुंबई बम धमाकों के लिए दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन को दोषी माना था। वर्ष 2007 में याकूब मेमन को धमाकों की साजिश में सजा सुनाने वाले जज पीके कोडे ने कहा,
अगर आप बोलते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो गई है तो मैं तो समझूंगा कि दिस इज अ सोलेस, यानी कि राहत है एक कॉमन आदमी के लिए हु कीप्स अ फेथ इन द जुडिशरी इन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंड द गवर्नमेंट।
ये फैसला इसलिए जरूरी है क्योंकि एक आम इंसान कोर्ट, सरकार और सरकारी जांच संस्थानों में भरोसा रखता है। मुझे इसलिए भी खुशी है क्योंकि लंबे समय के बाद अब इस मामले में अंतिम फैसला सुना दिया गया है। इससे पता लगता है कि चरमपंथी गतिविधियों में हिस्सा लेने से कोई फायदा नहीं मिलता। ये फैसला बताता है कि भारत में ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। मेमन को छोड़कर बाकी सभी 10 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। याकूब मेमन टाइगर मेमन के भाई हैं। मंगलवार को याकूब के क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की पीठ ने याकूब की याचिका खारिज कर दी थी। इस साल अप्रैल में जस्टिस एआर दवे ने मौत की सजा के खिलाफ याकूब के रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फांसी की सजा के खिलाफ याकूब की अपील पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने मार्च 2013 में उनकी मौत की सजा बरकरार रखी थी। फैसला आने के बाद सरकारी वकील उज्जवल निकम का कहना था,
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हिस्टोरिकल डिसीजन बिकॉज एक्यूज याकूब मेमन हैड ट्राइड टू प्रोलॉन्ग द एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ।
ये बहुत जरूरी फैसला था क्योंकि याकूब मेमन ने अपनी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चरमपंथी घटनाओं की साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। ये इसलिए है ताकि ऐसी गतिविधियों से जुड़े लोगों तक एक कड़ा संदेश पहुंचे। याकूब मेमन की फांसी मुंबई बम धमाकों से जुड़े मामलों में पहली फांसी होगी। इस मामले से जुड़ी एक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत की व्यावसायिक राजधानी को निशाना बनाने की साजिश दाऊद इब्राहिम ने टाइगर मेमन के साथ मिलकर तैयार की थी। फैसले के बाद भाजपा की प्रवक्ता शाइनी एनसी ने कहा,
Absolutely imperative to have people like Yaqub Memon hung to death because 1993 blast victims.
मुझे लगता है कि याकूब मेमन जैसे लोगों को फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए क्योंकि 1993 मुंबई धमाकों में मरने वालों के परिवार वालों को ऐसे ही न्याय मिलेगा। कानून का फैसला आने में वक्त लगता है पर यह फैसला सख्त संदेश भेजता है कि हमारे देश में चरम पंथ की कोई जगह नहीं है।
अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जिन लोगों को इन धमाकों के लिए दोषी पाया था उनमें टाइगर मेमन परिवार के 4 सदस्य याकूब मेमन, यूसुफ मेमन, ईसा मेमन और रुबीना मेमन शामिल हैं। इन सभी को धमाकों की साजिश में शामिल होने और चरमपंथ को बढ़ावा देने के लिए दोषी करार दिया गया था।
ये थे पंकज प्रियदर्शी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने कहा है कि व्यापम घोटाला और ललित गेट की वजह से पार्टी का सिर शर्म से झुक गया है। बीबीसी हिंदी से हुई बातचीत में शांता कुमार ने यह भी कहा कि बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व में संवाद की थोड़ी कमी हुई है। इस संबंध में शांता कुमार ने बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने शांता कुमार से बात की।
पहले तो ये बताएं कि पार्टी की दिशा और दशा अभी कैसी?
पार्टी आगे बढ़ रही है। पार्टी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। मैं 60 साल से हूँ और मुझे ये कहना है कि हमारी पार्टी की बहुत उपलब्धियाँ हैं और जब उपलब्धियाँ सामने आती हैं तो गर्व से सर ऊंचा हो जाता है, लेकिन जब कभी कोई छींटा पड़ता है तो दुख और परेशानी होती है और उस परेशानी को ही मैंने अपने इस पत्र में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखा है।
जी, उस पत्र में आपने लिखा कि आपका सर शर्म से झुक गया, व्यापम जो मध्य प्रदेश में कथित घोटाला है और जो ललित मोदी की कथित तौर पर मदद हुई है।
देखिए, मैंने यही कहा है कि जो घटनाएं घटी हैं और अखबारों में चैनल में जो सारी बातें आ रही हैं उससे हम लोग ये अनुभव कर रहे हैं, तो जो मैं अनुभव करता था वो सारी की सारी बात मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि मेरे जैसा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये बात कह सकता है। कांग्रेस में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और मुझे विश्वास है कि मैंने जो बात कही है उस बात पर मेरी पार्टी विचार अवश्य करेगी।
लेकिन ये बताएं कि आपके ऐसे वरिष्ठ नेता जो बहुत कम हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में भी लालकृष्ण आडवाणी हैं, आप हैं, यशवंत सिन्हा, बस चंद लोग बचे हैं टॉप लेवल पे, क्या आपको पत्र लिखने की जरूरत है? पार्टी प्रेसिडेंट बगल में 11 अशोका रोड, आपका 23 अशोका रोड पे घर, आपकी तो सुननी चाहिए पार्टी प्रेसिडेंट को।
नहीं, ये बात है कि हमारी पार्टी में संवाद की थोड़ी कमी हुई है, वो संवाद बढ़ना चाहिए, लेकिन अपने मन की बात तो हमें कहनी चाहिए। तो मैंने ये उचित समझा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी मन की बात कह दूं।
चिट्ठी के जरिए क्या वो सही तरीका है? आपको लगता है कि बेहतर है? अब तो सारी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है, इस वक्त आपको शायद पता नहीं है कि आप जो है वो पूरे भारत में ट्रेंड कर रहे हैं। आपकी जो चिट्ठी है और आपके जो आपने अफसोस जो जाहिर किया है वो सारे इंडिया में इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, आज पार्लियामेंट भी शुरू हुई है।
देखिए, ऐसा है कि वैसे तो 10 जुलाई को मैंने पत्र लिखा था, प्रेस को पत्र देने का मेरा कोई विचार नहीं था, मैं समझता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। लेकिन मेरी जो फेसबुक मेरे कुछ मित्र यहां देखते हैं, उनको लगा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो उन्होंने अनजाने में ये पत्र दे दिया। लेकिन मैं इस पत्र से पीछे नहीं हूँ, मैंने ये कहा है कि पत्र मेरा है, मैंने लिखा है, पत्र के एक एक शब्द के साथ मैं खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा।
करीब 10 दिन हो गए थे, पत्र का जवाब नहीं आया क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से?
नहीं, 10 जुलाई को मैंने ईमेल से पत्र भेजा था, उसी दिन शाम को उनके कार्यालय से जवाब आ गया था, पत्र मिला है, बहुत जल्दी आपको उत्तर देंगे
जी। एक आखिरी सवाल शांता कुमार साहब आपसे, क्या हम ये एक ट्रेंड सा देख रहे हैं क्या कि एक नई भारतीय जनता पार्टी है जहां पर वरिष्ठ नेता जो है थोड़े दुखी से लग रहे हैं? यशवंत सिन्हा साहब ने कहा मैं ब्रेन डेड हो चुका हूं।
मैं दुखी नहीं हूं, बिल्कुल दुखी नहीं हूं, मैं सबसे सुखी हूं। मैं नहीं बताऊंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि उनको क्या करना चाहिए, किसको कैबिनेट में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये उनका निर्णय है, मुझे मेरा काम करना चाहिए, इसे मुझे कोई गला नहीं। उनको नई परिस्थितियों में जो ठीक लगा होगा वो उन्होंने किया होगा, उस पर मैं कोई फैसला देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं बिल्कुल असंतुष्ट नहीं हूं।
फर्ज कीजिए आप भाजपा अध्यक्ष होते तो आप कैसे डील करते व्यापम से और ललित मोदी वाले मामले?
देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।
तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार का कहना है कि ललित मोदी और व्यापम घोटाले ने पार्टी को शर्मसार किया है, लेकिन अगर वो अध्यक्ष होते और क्या करते इस बारे में वो चुप रहना पसंद करते हैं। साथ ही उनका कहना है कि पार्टी अपने मूल्यों से दूर होती जा रही है। मैंने बीजेपी के मामलों पर नज़र रखने वाले और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह से पूछा कि क्या पार्टी वाकई अपने मूल्यों से पीछे हट रही है।
देखिए, जो बात शांता कुमार जी कह रहे हैं, मतलब सैद्धांतिक रूप से अगर आप देखें तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। घोटाला किसी भी सरकार किसी भी पार्टी के लिए अच्छी बात या गर्व की बात तो नहीं हो सकती, तो निश्चित रूप से शर्म की ही बात है। दूसरी बात, लोकपाल की या एथिक्स कमेटी की जो उन्होंने बात की है, ये पार्टियों में कभी इस तरह की व्यवस्था चली नहीं। आप देखिए, एक पार्टी जो अलग होने का दावा करके आई थी, आम आदमी पार्टी, उसने लोकपाल बनाया था और उसका क्या हश्र हुआ। तो जो नेतृत्व है वो अपने ऊपर सवाल उठते हुए देखना नहीं चाहता, ये तो एक पक्ष है शांता कुमार जी जो कह रहे हैं। दूसरा पक्ष ये है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय ऐसे नेताओं की संख्या ठीक ठाक है जिनको लगता है कि वो पार्टी और सरकार के लिए उपयोगी हो सकते हैं और पार्टी या सरकार उनका उपयोग नहीं कर सकती है। उसमें लंबी फहरिस्त है, लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से शुरू कीजिए, शांता कुमार, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, इस तरह के तमाम लोग हैं जिनको लगता है कि उनका बेहतर उपयोग होना चाहिए।
इसका मतलब ये निकाला जाए कि शांता कुमार पार्टी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उन्होंने इस वक्त ये लेटर भेजा है।
देखिए, उनके पास मंच उपलब्ध थे पार्टी के, पार्लियामेंट्री पार्टी में वो बोल सकते थे, पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में बोल सकते थे। दूसरी बात, उन्होंने अध्यक्ष को पत्र लिखा और वो मीडिया में आ गया, तो जाहिर है कि वो ये दर्ज कराना चाहते थे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। सीधे मीडिया से बात करने की बजाय उन्होंने पहले पत्र लिखा, फिर वो पत्र लीक हुआ, मीडिया तक पहुंचा, तो उसका उद्देश्य क्या था ये तो बड़ा स्पष्ट है। लेकिन बात उन्होंने निश्चित रूप से उठाई है, और ये केवल बीजेपी के लिए नहीं, सभी राजनीतिक दलों के लिए ये एक सोचने की बात है कि क्या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए पार्टी के अंदर जो इंटरनल डेमोक्रेसी जो है पार्टियों की उसको मजबूत करे, ये सवाल सभी राजनीतिक दलों से पूछा जाना चाहिए। शांता कुमार ने उठाया है, उनकी आज जो स्थिति है पार्टी में उसकी वजह से उस बात का उतना वजन नजर नहीं आता, अन्यथा उन्होंने जो बात उठाई है उसमें कोई कमी या कोई खराबी या कोई गलती नहीं है।
चलन पार्टी में चल पड़ा है कि पार्टी में अंदर बैठकर विचार विमर्श नहीं करना है किसी मुद्दे पर, लेकिन बाहर आकर निकलकर अपनी बात कहनी है, अपना विरोध दर्ज कराना है किसी भी मुद्दे पर।
उसकी वजह ये है कि इन लोगों को लगता है कि पार्टी के अंदर बात कहेंगे तो वो सुनी नहीं जाएगी, वो नकारखाने में दूती की आवाज की तरह दब जाएगी। अगर यही बात वो शायद पार्लियामेंट्री पार्टी या नेशनल एग्जीक्यूटिव में कहते तो दो चार लाइन की चर्चा होती, कहीं खबर बनती कहीं खबर नहीं बनती। चिट्ठी लिखने से एक बड़ी खबर बन गई और ऐसे मौके पर चिट्ठी सामने आई है जिस समय विपक्ष ने सरकार सत्तारूढ़ दल को कटघरे में खड़ा किया हुआ है, तो ऐसे में अंदर से अगर आलोचना का स्वर आए तो उसका महत्व बढ़ जाता है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह। आज संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था और पहले ही दिन राज्यसभा में विपक्षी पार्टी के सांसदों ने ललित मोदी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को की मदद को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का इस्तीफा मांगा, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई। आज हुई सदन की कार्यवाही पर मैंने बात की नितिन श्रीवास्तव से।
सुशीला, एकदम वैसे ही हुआ जैसी उम्मीद थी। दो मुद्दे थे जो हावी रहे लोकसभा में राज्यसभा में। लोकसभा में ज्यादा मामला उठ नहीं सका क्योंकि लोकसभा में जो पुराने सदस्य दिवंगत हो गए पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में, उनकी याद में सदन स्थगित कर दिया गया। लेकिन राज्यसभा में खासा हंगामा उठा। शुरुआत से पहले व्यापम का मामला उठा, लेकिन उसके बाद जो प्रमुख निशाना बनी सरकार वो बनी ललित मोदी की कथित मदद मामले में, और उसके अलावा सुषमा स्वराज ने जो चिट्ठी लिखी कथित तौर पर वसुंधरा राजे के अलावा, उन दोनों को निशाना बनाया गया। जो विपक्षी नेता थे उन्होंने लोकसभा पहुंचने के पहले बाहर सीढ़ियों पर ही आज दोपहर का माहौल जो था कैसा होने वाला है बता दिया था। सुनते हैं मायावती ने, बहुजन समाज पार्टी की नेता, उन्होंने क्या कहा था।
चाहे तो विदेश मंत्री है चाहे राजस्थान की मुख्यमंत्री है, मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके का मामला गंभीर मामला है और ललित मोदी का जो खास तौर से आर्थिक अपराध से जो जुड़ा हुआ मामला है, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस मामले में खास तौर से इन दोनों महिलाओं का जो रोल रहा है, और ये कहना कि भी मानवता के आधार पर तो कानून फिर इस देश में रह किधर गया है।
ये थी मायावती। लेकिन अंदर राज्यसभा में जो कांग्रेसी नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री कॉमर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं आनंद शर्मा, बहुत ज्यादा तीखे तेवर में थे। उन्होंने अपने भाषण शुरुआत करते ही 30-40 सेकेंड बाद ही सीधे सरकार को आड़े हाथों लिया और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सुषमा स्वराज की वो बहुत इज्जत करते हैं लेकिन उन्होंने जो किया वो एकदम गलत है।
मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कहता हूं, मैं सम्मान करता हूं भारत की विदेश मंत्री का, उन्होंने ब्रिटेन की सरकार से ये कहा कि इस व्यक्ति को वहां के ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएं।
जी नितिन, ये भी देखा जा रहा था कि सरकार भी बचाव की मुद्रा में नहीं नजर आ रही थी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खड़े होकर ये कहा कि अगर विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा चाहता है, डिबेट चाहता है, तो वो तैयार है इसके ऊपर।
जी बिल्कुल, क्योंकि आनंद शर्मा जो कांग्रेस के और दूसरे नेता थे, यहाँ तक कहूँगा कि सीताराम येचुरी भी काफ़ी उग्र लग रहे थे। आनंद शर्मा ने यहाँ तक सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने मर्यादाओं को तोड़ा है और भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। उस पर अरुण जेटली उठे और उन्होंने सरकार की तरफ से आखिरकार सदन में अपना पक्ष साफ किया।
माननीय उपसभापति जी, मैं सारा विवाद समाप्त कर देता हूँ। श्री आनंद शर्मा जी का ये कहना है कि नियम 267 के तहत नियम सस्पेंड करके इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा को तुरंत आरंभ कीजिए, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज आकर उसका तुरंत जवाब दें, चार्ज पर डिस्कशन राइट।
तो सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, इस पर कयास भी लग रहे थे। ये बताया जा रहा था कि सदन के मानसून सत्र शुरू होने के पहले सरकार कमर कस चुकी है कि अब वो अपने लोगों को बचाएगी। सरकार के हिसाब से उन्होंने फिलहाल कोई गलती नहीं की है। सदन आगे कैसे चलेगी, मानसून सत्र कितना स्मूथ रहेगा, कितनी कुशलतापूर्वक चल सकेगा, ये आगे के दिनों में पता लगेगा।
संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा की कार्रवाई हुई कई बार बाधित, ये थे नितिन श्रीवास्तव। बिहार में 6 वामपंथी दलों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था। केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी जातियों के खिलाफ ये बंद बुलाया गया था। बंद का असर पूरे राज्य में दिखा। वाम दलों से जुड़े छात्र और अन्य संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन किया। एक रिपोर्ट के साथ पटना से मनीष शांडिल्य।
पटना सहित पूरे बिहार में आज एक बार फिर वामपंथी दलों के कार्यकर्ता लाल झंडा लिए सड़कों पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते उतरे। मौका था बिहार के 6 वाम दलों द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ और अपने 12 सूत्री मांगों के समर्थन में बुलाए गए बिहार बंद का। जिन दलों ने बंद का आह्वान किया था उनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, SUCI, फॉरवर्ड ब्लॉक और RSP शामिल थे। आज सुबह से ही राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में वाम दलों के कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने के लिए मुस्तैद हो गए थे। वे अपनी अपनी पार्टी के बैनर और झंडे लिए केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे। साथ ही कई जिलों में सुबह ट्रेनों को भी रोका गया। पटना में सभी वामपंथी दलों के नेता कार्यकर्ता गांधी मैदान में जुटे, फिर वहां से जुलूस की शक्ल में वे डाक बंगला चौराहा पहुंचे, जहां बंद के सिलसिले में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। चौराहे पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को निशाने पर लेते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा,
आज महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, झारखंड, सब जगह से घोटालों की रिपोर्ट आ रही है। इन तमाम दागी मंत्रियों से हम इस्तीफा मांग रहे हैं। यही वक्त है नीतीश कुमार से जवाब मांगने का, यही वक्त है उनसे पूछने का कि पिछले 10 साल से जो आपने वादा किया था बिहार के भूमिहीनों को जमीन मिलेगी, जो भूमि सुधार आयोग ने भी सिफारिश की थी, उस वादा क्यों नहीं पूरा हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि आज बिहार के गांव गांव में जो राशन किराशन के लिए हाहाकार है वो क्यों है।
केंद्र सरकार का भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, ललित मोदी प्रकरण और व्यापम घोटालों में भाजपा नेताओं की संलिप्तता, महंगाई, बिहार में बढ़ता भ्रष्टाचार, भूमि सुधार को लागू करने में नीतीश सरकार की नाकामी जैसे मुद्दों पर आज का बंद बुलाया गया था। कार्यक्रम में वामपंथी एकता की जरूरत को बतलाते हुए CPM के राज्य सचिव अवधेश सिंह ने कहा,
बिहार की बड़ी आबादी है, मतदाता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ और नीतीश लालू और कांग्रेस का जो अवसरवादी गठबंधन बना है, इस गठबंधन के खिलाफ एक मजबूत विकल्प चाहते हैं। वो विकल्प अगर कोई दे सकता है तो वामपंथी एकता दे सकता है, लाल झंडा दे सकता है, चुनाव में भी हम देंगे, यही कहने के लिए हम आए हैं।
डाक बंगला पर हुए विरोध प्रदर्शन को CPI के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह सहित कुछ दूसरे नेताओं ने भी संबोधित किया। प्रमुख नेताओं के भाषण के बाद आज के बंद को सफल करार देते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि आज के बंद से वामपंथी दलों ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है। विधानसभा चुनाव ये दल साथ मिलकर लड़ेंगे। जल्द ही वाम दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें सीटों के बंटवारे सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। मनीष शांडिल्य, पटना।
मुंबई की लोकल ट्रेन में इन दिनों गाना गाकर या दूसरे वाद्य यंत्र बजाते आपको कुछ लोग दिख जाएंगे जो भिखारी नहीं बल्कि संगीत के विद्यार्थी हैं, जो एक साथ मिलकर अब अपने जैसे ट्रेन में गाने बजाने वालों का एक बैंड बना रहे हैं। इस म्यूजिकल बैंड की पहल के बारे में बता रही हैं मुंबई से मधु पाल।
कहते हैं अपने लिए तो कोई भी लड़ लेता है, मुश्किल है तो दूसरों के लिए लड़ना, और कुछ ऐसा ही किया है 24 साल की हेमलता महेंद्र तिवारी ने। हेमलता ने रेलवे प्लेटफॉर्म और मुंबई की लोकल ट्रेन में गाने बजाने वाले आर्टिस्ट जिन्हें लोग भिखारी का दर्जा देते हैं उनके लिए लड़ाई लड़ी और बनाया उनका खुद का एक म्यूजिक बैंड जिसे नाम दिया स्वराधार। इसके चलते इन्हें मिली इज्जत की जिंदगी। स्वराधार बनाने वाली हेमलता कहती हैं,
फर्स्ट मे का दिन था और महाराष्ट्र का 50 इयर्स का सेलिब्रेशन था, बहुत जोरों शोरों से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया था। मैं उसी शो के लिए जा रही थी और अंधेरी स्टेशन पे शाम को उतरी, मैं देखा थोड़ी सी भीड़ है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर, तो दो लोग गा रहे थे, मतलब वैसे प्लेटफॉर्म पर बैठ के, एक बंदा था वो तबला बजा रहे थे और दूसरे जो थे हारमोनियम बजा रहे थे, और दोनों ही लोग इतना खूबसूरत गा रहे थे, इतना बेहतरीन बजा रहे थे, मतलब उन्होंने तबले में से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ प्ले की जो बहुत ही यूनिक है, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी काफ़ी कम बार ये कर पाते हैं। वो तब लिंक लगी और सोचा चलो क्यों ना इनको एक ग्रुप में बांधा जाए और अगर इनका परफॉर्मेंस इनका ऑर्केस्ट्रा बने तो कैसे होगा।
हर सफर की एक मंजिल होती है। ट्रेन से शुरू हुआ इनका सफर अब बॉलीवुड तक पहुंच चुका है। इस फिल्मी सफर के बारे में हेमलता बताती हैं।
स्वराधार के माध्यम से जैसे हमने कहा कि बहुत सारे ऑर्केस्ट्राज होते हैं पर इंडिविजुअली इनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जैसे हमारा एक आर्टिस्ट है, इज़ ए चाइल्ड आर्टिस्ट, इस साल के इंडियन आइडल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इंडियन आइडल जूनियर में सेलेक्ट तो नहीं हुए पर उनका रिदम का नॉलेज बहुत स्ट्रांग है। इज़ जस्ट 13 ईयर ओल्ड दीपेश, इतना स्ट्रांग है कि विशाल दिदलानी ने उनको ऑफर की कि आप पर्सनली आके मुझसे मिलिए और मेरे ट्रुप में अगर आप काम कर सके तो। अलॉन्ग विद दिस हमारे एक आर्टिस्ट है इरशाद है जो फ्लूट प्ले करते हैं, तो उन्होंने कई फिल्मों के लिए फ्लूट बजाई है।
मोहम्मद रफ़ी को अपना गुरु मानने वाले संतोष शर्मा, वो देख तो नहीं सकते लेकिन उनकी आवाज़ का जादू सबके दिलों को छूता है। उनके हुनर को जो सम्मान ट्रेन में नहीं मिला वो आज मंच पर मिल रहा है। संतोष कहते हैं
ट्रेन में एक रुपया दो रुपया एक रुपया, अब ट्रेन में वो इज्जत नहीं रहती जो इज्जत स्टेज पर रहती। ट्रेन में जब गाते हैं तो फिर लोग कई लोग सोचते हैं इसका रोज का ऐसा धंधा है, भिखारी है, ऐसा वैसा, लोग क्या क्या सोचते होंगे वो तो वही जानेंगे। लेकिन ट्रेन में घूमना एक हमारी मजबूरी है। वहाँ का माहौल कुछ ऐसा ऐसा कोई सोचने वाला नहीं रहता कि ये भिखारी है ये है वो।
विष्णु भाई पटेल जिनके हुनर को ट्रेन में धुतकारा जाता था आज उसी हुनर को देख मंच में खूब तालियां और वाहवाही मिलती है। अपने इसी परिवर्तन पर विष्णु कहते हैं
जाते हैं जब स्टेज पे जाके बजाते हैं सब आदमी हमको ताली बजा कर स्वागत करते हैं, स्वागत तो हमको भी अच्छा लगता है कि देखो हमारी कितनी इज्जत हो रही है कि हमारे लिए कितनी ताली बज रही है सामने से। फिर कोई बोलता है वंस मोर, कोई बोलता है भाई अरे और बजा, ऐसे हमको बहुत इज्जत मिलती है उधर।
अगर आप कभी मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करें और आपकी मुलाकात इन गुमनाम आर्टिस्ट से हो जाए तो आप इन्हें भिखारी समझ कर धुतकारें नहीं बल्कि उनकी कला का सम्मान करें। मधुपाल, बीबीसी मुंबई।
आपको मधुपाल की ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। और अब वक्त है खेल समाचारों का। मेरे सामने आदेश जी मुस्कुरा रहे हैं। आदेश जी मुस्कुराएं भी क्यों ना, क्योंकि 2020 विश्व कप टूर्नामेंट की जो है वेन्यू तय हो गया है।
जी हाँ बिल्कुल, अगले साल 11 मार्च से 3 अप्रैल तक भारत में होने वाले ICC 2020 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर खेला जाएगा। विश्व कप के मुकाबले भारत के 8 शहरों बेंगलोर, चेन्नई, धर्मशाला, मोहाली, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली और कोलकाता में खेले जाएंगे। उल्लेखनीय है कि 2020 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट पहली बार भारत में आयोजित होगा। इसके अलावा चर्चा कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच की, जहां चिटगांव में आज बांग्लादेशी गेंदबाजों ने बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरी दक्षिण अफ्रीकी टीम का पुलिंदा 248 रन पर ही बांध दिया। वैसे बांग्लादेश ने पिछले दिनों भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में तो शानदार प्रदर्शन किया ही था, लेकिन अब टेस्ट मैच में भी जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है तो निश्चित रूप से उन्होंने दिखा दिया है कि अब वो टेस्ट क्रिकेट में भी अपने कदमों को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। आज बांग्लादेश की ओर से मुतफिजुर रहमान, जिन्हें अपना पहला टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, उन्होंने 37 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि लेग ब्रेक गेंदबाज जुबैर हुसैन ने 53 रन देकर 3 विकेट लिए। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की ओर से पहले विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन उसके बाद नियमित अंतराल पर बांग्लादेशी गेंदबाज विकेट लेते रहे और दक्षिण अफ्रीका की ओर से तेम्बा बुआमा ने सर्वाधिक 54 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज डीन एल्गर ने 47 और स्टियान वान जील ने 34 रनों का योगदान दिया, जबकि फैब डुप्लेसिस ने भी 48 रन बनाए। जब आज का खेल समाप्त हुआ तब बांग्लादेश ने बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए थे। अब देखना है कि बांग्लादेशी बल्लेबाज किस तरह से अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते हैं कि हाँ वो बैटिंग में भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं।
जी, खेल समाचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के आरोपी याकूब मेमन की आखिरी अपील को भी खारिज कर दिया है। ब्रिटानी सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि अगले 5 सालों में सरकारी खर्चे में 40% और 25% बचत करने की योजना बनाएं। दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स देशों के समूह ने शंघाई में एक विकास बैंक की शुरुआत की है। जापान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक तोशिबा के मुख्य कार्यकारी हिसाओ तनाका ने वित्तीय खातों में भारी घोटाले की जिम्मेदारी लेते हुए आज इस्तीफा दे दिया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। इसी के साथ दिन भर के इस अंक में आज बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक तकनीकी सहयोगी कुणाल शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत।